میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. اٹلی کے شہر بولونیا کے فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، بے شک میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسے لوگوں کی طرح ہے جو کسی جنگل ویرانے میں، سنسان جنگل میں سفر کرتے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ جس قدر انہوں نے راستہ طے کیا وہ زیادہ ہے یا کتنا، یعنی اب راستہ کتنا باقی ہے. اسی حال میں ان کا سامان اور جو کچھ تھا یہ سب ختم ہو جاتا ہے، سواری کے جانور بھی ان کے مر جاتے ہیں. اب وہ پورے اس جنگل تیرا ویرانے میں یہ اکیلے رہ گئے. اب انہیں اس بات کا ایک طرح سے یقین ہو گیا کہ اب ہلاکت ہوئی جائے گی، اب مرے کے اب مرے. وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اچانک ان پر ایک شخص اچھے لباس میں ظاہر ہو جاتا ہے، جس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص قریبی کسی ایسے علاقے سے آیا جو زرخیز ہے، شاداب ہے، باغ والا ہے، پانی ہے وہاں پر. جب وہ شخص ان کے قریب پہنچتا ہے تو انہیں پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں. پھر وہ شخص ان سے پوچھتا ہے تمہارا کیا حال ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا حال نہیں دیکھ رہے. وہ شخص کہتا ہے اگر میں صاف شفاف پانی اور سر سبز و شاداب باغات کی طرف تمہیں پتہ بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ کہتے جو تم کہو ہم وہی کریں. وہ ویرانہ ہلاکت ایسی کیفیت، اور اس میں اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں ایک ایسی جگہ کا پتہ بتاتا ہوں جہاں پانی سر سب تو شاداب و باغ و بہار ہے تو تم کیا کہو گے؟ بولے جو آپ کہو گے ہم وہ کریں گے. وہ شخص کہتا ہے کہ تم اس پر اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے؟ تو وہ کہیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں، جو کچھ تم کہو گے ہم وہی کریں گے، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے. یہ سن کر وہ شخص ان لوگوں کو اس سرسب و شاداب جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے، بڑے مطلب کے باغ ہوتے ہیں، وہاں لے جاتا ہے. جب تک اللہ پاک چاہتا ہے وہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں. پھر ایک دن وہ شخص ان سے کہتا ہے لوگوں اب یہاں سے چلو. لوگ کہتے ہیں کہاں؟ وہ شخص کہتا ہے ایسی جگہ کی طرف جہاں کا پانی یہاں کے پانی سے زیادہ میٹھا ہے اور جہاں کے باغات یہاں کے باغات سے زیادہ سرسبز و شاداب ہیں. پر جن لوگوں نے اس شخص کی پیروی کی، بات مانی، وہ فائدے میں رہے، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کا یہ حشر ہوا کہ دشمن نے ان پر یلغار کی تو ان میں سے کچھ قیدی بنا لیے گئے اور بعض قتل کر دیے گئے. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چین کے ناظرین، یہ مثال بڑی سمجھنے والی ہے اور اس بات کو امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیارے انداز سے مزید وضاحت کے ساتھ مزید کو کھولا گیا اور مزید اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی، آئی لینڈ. لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے. کشتی والا جو تھا اس سے اعلان کیا کہ یہاں سے جلدی رخصت ہونا ہے، جلدی آ جانا، وقت ضائع مت کرنا. جزیرے پر اترنے کے بعد لوگ تین گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک وہاں اتر کے وہاں کی سیر و سیاحت، تفریح، مختلف مناظر، مختلف جگہوں میں مشغول ہو گئے. इनको वापसी किश्ती याद ही नहीं रही, हत्ता के वही भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, दरिंदे उनको खा गए। एक गुरु अकलमंदों का था, वो अपनी हाजत से जरूरत की चीज फारिग करके फौरन कश्ती में आकर बैठ गया। तीसरा वो गुरु था जो जजीरे पर उतरा और मुख्तलिफ अजीब गरीब किस्म के फल परिंदे और इसमें मशगूल हो गया, चीजें ली खरीदी, इतना सारा सामान उठाया और उठाकर वो किश्ती की तरफ ले आए। अब किश्ती में मजी जगह तो थी नहीं, वो उसको लाद कर अपने सर पर बैठे रहे। दो दिन के बाद वो सामान भी सड़ गया कि फेंकते किधर, किश्ती को फेंकने की जगह नहीं, तो पानी में चल रहे थे। अब वो चीजों में बदबू पैदा हो गई और उनको अफसोस हुआ, नादिम हुए और शर्मिंदा हुए। पहला गुरु जो वापसी को ही भूल गया और यही को साफ कुछ समझ कर यहीं की जिंदगी को ऐशो इशरत का सामान पैदा कर यही रहना है, बाकी जिंदगी के बारे में मरने के बाद उठने के बारे में तो उनका अकीदा वैसे भी नहीं है, मुसलमान का अकीदा है। और दूसरा गुरु अकलमंदों का था कि वो फौरन अपना काम पूरा किया और आकर बैठ गए, क्योंकि आगे जाना है, सफर तो आगे, ये तो एक तरह से एक स्टेशन है टेम्परेरी। तो तीसरा गुरु कौन सा था जो किश्ती में वापस तो गया मगर उसने उस जजीरे पर उतरने पर अपना मकसद खत्म कर दिया। उसने यहां का इतना सामान उठा लिया कि वो सामान उठाकर आगे सफर करने की उसकी पोजीशन ही नहीं थी। आखिरकार उसको शर्मिंदा होना पड़ा कि ये मैंने क्या कर दिया। हदीस पाक में आता है पुल सिरा से वो शख्स आसानी से गुजरेगा जो हल्का फुल्का होगा। मैंने जब ये इबारत पढ़ी लगता है ये पूरा मौजू है, पूरा टॉपिक है ये। वो इबारत क्या है यानी वो लाइन क्या है, वो लाइन को समझें जो अमूमन हमारे यहां होता है। इमाम गजाली अलैहि रहमान ने जो लिखा है इस तरह, दुनियादारों का दुनियावी कारोबार में मशगूल होकर आखरत को भुला देना, ये इतनी अहम और उमदा इरशाद है, ये हम सब पर इस पर हम सबको इस पर गौर करना है। आज हमारा समझेगा मौजू इसी तरह का है, भाई क्या करें, ऐसा क्या कर रहे हैं, सही तो है भाई क्या करें, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, खाली मस्जिद में आकर बैठ जाएं, क्या कारोबार ना करें, रोजगार इख्तियार ना करें, बीवी बच्चों का पेट ना पालें, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कुर्बानियां देते हैं, सुबह निकलते हैं शाम तक, शाम को फिर रात तक आते घर पर थक के आ रहे सो जाते हैं, क्या करें भैयान, हम लोग क्या चाहते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हो। दुनियावी कारोबार में मशगूल होकर अपनी आखरत को भूल बैठा, अपनी आखरत को भुला बैठा, अपनी आखरत फरामोश कर बैठा। बात उसकी हो रही है जो रिस्क हलाल कमा रहा है, हराम में रिस्क हलाल कमा रहा है और रिस्क हलाल कमाने के साथ साथ 500 नमाज अपने वक्त पर अदा कर रहा है, जिंदगी को सुन्नत और शरीयत फर्ज और वाजिब के मुताबिक गुजार रहा है, नेकी की दावत दे रहा है, नेकी के काम कर रहा है। घर में भी तो नेकी की दावत देनी होती है ना, चलो आप बोलो जरा मोहल्ले में इलाके में हालात ऐसे नहीं है, भाई घर में तो नेकी की दावत देनी है, बीवी को नेकी की दावत देनी है, बीवी ने शोहर को नेकी की दावत देनी है, माँ बाप ने औलाद को नेकी की दावत देनी है, औलाद ने माँ बाप के साथ भी इस तरह की तो हमदर्दी और शफकत और मोहब्बत का इजहार करना होता है। ऐसा कुछ हो रहा है दुनियावी कारोबार में, दुनियावी काम में मशगूल होकर आखरत को भुला देना, आखरत को भुलाना क्या है, नमाज ना पढ़ना यह आखरत को भुलाना कहलाएगा, झूठ बोलना यानी खुदा का खौफ दिल से कम हो जाना, आखरत की तैयारी ना करना, कब्र हशर की तैयारी ना करना, यह सोच ही खत्म कर देना कि मौत के वक्त क्या होगा, नजा के वक्त क्या होगा, ईमान सलामत रहेगा नहीं रहेगा, कब्र में अजाब होगा कब्र में अजाब नहीं होगा, कब्र में आग का कफन हो गया या जन्नती कफन होगा, मैं सवालात के जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, ईमान सलामत लेके जाना नसीब होगा या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि ईमान मेरा जाया हो जाए, कयामत का क्या होगा, सूरज सवा मील पर होगा, आग बरसा रहा होगा, ऐसे मुसलमानों की तादाद होगी जिन्हें अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग में झोंका जाएगा, जलाया जाएगा, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो जहन्नम में जाएंगे, ये जुदा बात है कि ईमान अगर सलामत लेकर गए मुसलमान तो तभी थे ना कि ईमान सलामत लेकर गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत से शफाअत के साथ उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल आखिर कर करवाएंगे कि फाइनली जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए वही होगा जो ईमान पर नहीं मरेगा, कुफर में मरेगा, गैर मुस्लिम मरेगा। अगर मुसलमान मरा ईमान के साथ मरा तो अगर के हो उसके गुनाह की वजह से अगर जहन्नम में डाल भी दिया गया मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। मगर सुनो, है कोई जो जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर सके? जो कहे मैं बर्दाश्त कर लूंगा वो तो कहते काफिर हो जाएगा कि जिसने जहन्नम के अजाब की तख़फ़ीफ की उसको हल्का जाना उसको तो ईमान ही चला जाएगा। हमें तो इस चीज से डरना है कि कहीं लम्हे भर के लिए भी हमें जहन्नम में ना डाल दिया जाए कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब यह बयान किया गया कि उसके पांव में जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, उसका उसकी तपिश से उसका दिमाग पतीली की तरह खोलता होगा। तो ये दुनियावी कारोबार और दुनियावी कामों में मशगूल होकर, मसरूफ होकर, बिजी होकर आखरत को फरामोश कर देना, आखरत को भुला देना मजम्मत इसकी हो रही है। बात सिर्फ शराब पीने की नहीं है, वो भी हराम। बात सिर्फ जुआ खेलने की नहीं है, वो भी हराम। बात सिर्फ बदकारी करने की नहीं है, वो भी हराम। हराम ये भी है, लेकिन क्या नमाज कजा करना हराम नहीं? गीबत पेट भर भर के गीबत करना, चुगलियां करना, तोहमतें बांधना हराम कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, बीवी बच्चों पर जुल्म करते हैं, औरतें अपने शोरों की नाफरमानियां करती हैं, शोर अपने बीवी के शरी हक अदा नहीं करते, औलाद माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं करती, माँ बाप औलाद पर जुल्म और सितम कर बैठते हैं, मुलाजिमीन के साथ, नौकरों के साथ, सर्वेंट के साथ, पड़ोसियों के साथ। अरे कोई गुनाहों की कोई एक लिस्ट है तो बयान करे भाई, कबीरा गुनाहों की लिस्ट ही लिस्ट है। सुबह से लेकर रात तक आखरत याद हम में से आती किसको है? इल्ला माशाल्लाह। हमें कर्जा चढ़ गया, रोना आया, बीमारी आ गई, रोना आया, तंदुरुस्ती आ गई, रोना आया, रोजगार की कमी, रोना आया, आमदनी कम हो गई, रोना आया, बीवी तंग करती है, रोना आया, शोर सताता है, रोना आया, बच्चे नाफरमान, रोना आया, माँ बाप शफकत नहीं करते, रोना आया, दोस्त छोड़कर चला गया, रोना आया, ये बेवफाई हो गई, रोना आया, वो ये हो गया, रोना आया, ये सारी बातें रुलाती है। अरे कभी आखरत के याद में भी रोना आया? कभी कब्र को याद करके भी रोना आया? अपने गुनाहों को याद करके रोना आया? अजाब कब्र को याद करके भी रोना आया? जहन्नम को याद करके भी रोना आया? जिस जहन्नम का तस्किरा सुनकर, कब्र का तस्किरा सुनकर अल्लाह के नेक बंदे फूट फूट कर रोया करते थे, कभी इसलिए भी रोना आया? अजाब कब्र को याद करके रोना आया? कभी इसलिए रोना आया कि या अल्लाह ये गुनाह हो गया, तू नाराज हो गया तो मेरा क्या बनेगा, और रो रो कर रब को मनाना कभी याद आया? इन आंखों से आंसू बहते जरूर हैं, मगर दुनिया के गम में बहते हैं, माल के गम में बहते हैं, दुनियावी मोहब्बत के गम में बहते हैं, बीवी बच्चों और औलाद की मोहब्बत के गम में बहते हैं। यहां से कोई शख्स हमारा फोत हो गया, आंख से आंसू निकला, एक वक्त की नमाज फोत हुई, कभी आंख से आंसू निकला? दुनिया की मोहब्बत में गर्क होकर हम आखरत को भुला बैठे हैं। बात इस पर हो रही है, बात इस पर हो रही है, तालीम के नाम पर कोई सोचता नहीं है। इल्ला माशाल्लाह, मैं जनरल बात करता हूं कि जनाब ये तालीम जायज के ना जायज, ये दावत में जाना जायज के ना जायज, ये खाना खाना जायज के ना जायज, ये पहनना जायज के ना जायज, इस तरह मर्दों और औरतों का, औरतों का मर्दों में जाना जायज के ना जायज, ये जो लॉकेट पहना है, चेन पहनी, जायज के ना जायज, ब्रेसलेट पहना है, जायज के ना जायज, ये जो दाढ़ी मुंडाता हूं जो है ही ना जायज। कहां सोचते हम लोग इतना? फला ने किया हम भी कर रहे हैं, वो ये कपड़े पहनता है हम भी पहन रहे हैं, आधे नंगे होकर तो दुनिया घूम रही है, कोटरे खुले, राने खुली, गैर मुस्लिम कर रहा है। भाई गैर मुस्लिम का तो मैंने बयान किया ना, उसने दुनिया की जिंदगी को ही आसाइश का घर बना लिया है कि कामयाबी इसमें है कि मैं यहां पर आसाइश के साथ जी जाऊं, पैसा हो, गाड़ी हो, आसाइश हो, मौज मस्ती हो, गया कि ये सक्सेसफुल लाइफ है, अपना मकान हो गया, अपनी गाड़ी हो गई, ये जनाब इधर उधर की जो भी कुछ होती है ये हो गई, ये सक्सेसफुल लाइफ है। मुसलमान इसलिए नहीं है, मुसलमान को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। हम बता, हमें तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलकतु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंसानों को तो इबादत के लिए पैदा किया गया है। तो एक तो गैर मुस्लिम की जिंदगी है, एक मुसलमान की जिंदगी। एक शख्स के सामने सुअर रखा हुआ, गैर मुस्लिम, एक मिसाल दे रहा हूं, सुअर रखा हुआ गैर मुस्लिम खा रहा है, हिदायत मिलती है, बात सुनता है, एक मिसाल ये सिर्फ समझाने के लिए, खा रहा है, अचानक कोई बात आई, कोई चोट लगी, कोई बात सुनी, कोई नेकी की दावत दी, बुराई से मना करने से सिलसिला हुआ, उस वक्त तो मुसलमान हो जाता है। और उसे पता चल जाता है कि जो ये मेरे सामने गोश्त रखा हुआ इसका खाना क्या है, अब खाएगा। एक मिनट लगी, जहन बदल गया, जब खा रहा था तो इसके नजदीक दुरुस्त था और अब इसके नजदीक हराम है, क्योंकि पहले गैर मुस्लिम था, अब क्या हो गया है, मुसलमान। पता चल गया कि ये जिस रब का मैंने कलीमा पढ़ा है, जो मेरा रब है, मेरा मालिक है, मेरा मौला है, मेरा पालने वाला है, जिंदगी और मौत का मालिक है, उसे मना फरमाया, हराम का है और इंशाल्लाह कभी भी नहीं खाएंगे। तो जिंदगी जो हमारी गुजर रही है इसका जायजा लेना है। आखिरत को भुला देने वाले कामों को याद करें कि यार ये आखिरत को भुला देने वाला तो ये जिंदगी का अंदाज सही नहीं है। घर पे जाते हैं, फिल्म ड्रामे, गाने बाजे, टीवी, सो गए, ईशा नहीं पड़ी, उठे तो फजर नहीं पड़ी, पूरे दिन में कोई नमाज नहीं पढ़ी, कुरान देकर पढ़ना आता नहीं सही। आप गौर कर ले हमारी जिंदगी गुजर कैसे रही है। आप बोलो यार पैसा कमाने के लिए आए, अभी इस पर मैं तबरा नहीं करता कैसे आए, क्या आए, क्यों आए। अब बताए ये कौन से जिंदगी अंदाज है, एक मुसलमान का ये अंदाज जिंदगी नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाइयों। एक मुसलमान को तो अपने रब की इबादत के साथ जीना है ना, रिस्क कमाना है, रोजगार कमाना है, बीवी बच्चों के लिए कमाना है, माँ बाप के लिए कमाना है, अपने आप को मांगने से बचने के लिए रोजगार कमाना है। मैं इसका कह रहा हूं ये तो जरूरी है, करना है, मांग कर नहीं जीना, कमा कर जीना है, अपने हाथों की कमाई अफजल कमाई है। मगर प्यारे स्वामी भाइयों किसने कहा है कि ये कमाने के लिए हम रब की नाफरमानी करें, उस रज्जाक की नाफरमानी करें जो हमें रिस्क दे रहा है, उसकी नाफरमानी करें, उसकी बात ना माने, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात ना माने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे। ये हमारी नफ्स, हमारी शरारत है। दुनिया को छोड़ो, दुनिया को छोड़ने को समझे इसका मतलब ये है कि गुनाह छोड़ो। भाई एक शख्स है, नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, नेकी करता है, एक मुट्ठी दाढ़ी है, सर पर इमामा भी है, सुन्नत पर अमल करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, कारोबार करता है, कामकाज करता है, रोजगार कमाता है, खुशी गमी में शिरकत करता है, हर जगह ये देखता है कि भाई शरीयत के मुताबिक है या नहीं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए। वो उस शादी में नहीं जाऊंगा वहां गुनाह हो रहा है, इस शादी में जाऊंगा क्योंकि यहाँ गुनाह नहीं हो रहा, फला जगह जाऊंगा वहां गुनाह होगा, फला जगह जाऊंगा गुनाह नहीं होगा, ये कमाऊंगा तो गुनाह होगा, ये कमाऊंगा तो गुनाह नहीं होगा, ये पहनूंगा तो गुनाह नहीं होगा, वो पहनूंगा तो गुनाह होगा, ये खाऊंगा तो गुनाह होगा, ये खाऊंगा तो गुनाह नहीं होगा। एक शख्स इस तरह जीता है, खाता वो भी है, सोता वो भी है, पीता वो भी है, जीता वो भी है, मगर उसका जीना, उसकी सब कुछ उसके रब के लिए है। आप भी 7-8 घंटे सोते हो, वो भी 7-8 घंटे सोता है, आप भी 2-3 टाइम का खाते, वो भी 2-3 टाइम का खाता है, मगर वो गुनाह से बच कर जी रहा है। जी तो वो भी हमारे दरमियान में रहा है। हमें किस चीज ने रोका हुआ है नेकी करने से, कोई चीज हाथ से नहीं जा रही, वही रोजगार मिल रहा है, वही कमाई मिल रही है, वही कारोबार के लिए वो निकल रहे सुबह को। क्या साहबा करम अली वो रिजवान बाजार में नहीं जाते थे, क्या ये कारोबार नहीं करते थे, औलिया कामलीन कारोबार नहीं करते थे, बुजुर्गाने दीन कारोबार नहीं करते थे, उनके भी कारोबार थे, रोजगार था, बी बच्चे थे, आस पड़ोस था, ऐसे भी गुजरे गए जिनके महले में इलाके में मुसलमान गैर मुस्लिम सब साथ रहते थे। हमें क्या हो गया है, हम ये सारा कुछ छोड़ छाड़ कर एक आंख बंद करके जी रहे हैं, पता ही कोई नहीं है कि हम जी रहे हैं। इस जीने पर हमें मिलेगा क्या, गुनाह का सवाब, और बैठे बिठाए इसी तरह मौत आ जाती है, इसी तरह मौत आ जाती है। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो सब तो लुटा कर बैठ गए, कब्र में जाकर पता चला कि भाई ये क्या था, तो धोखा था। तो धोखे की जिंदगी गुजार कर चला गया यादव। अब देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने पारा 27 सूरह हदीद की आयत नंबर 20 में क्या इरशाद फरमाया, आसान तर्जमा कुरान कर्जुल इरफान। अब सुनिए अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में क्या फरमाया, जान लो कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल कूद और जीनत और आपस में फख्र और गुरूर करना और मालों और औलाद में एक दूसरे पर ज्यादती चाहना है। बड़ा आसान तर्जमा तर्जमा कुरान कंजुल इरफान है, सिरात जिनान से पढ़कर सुना रहा हूं, तफसीर जो हम दावत इस्लामी मुक्तदर मदीना ने शाया की है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल कूद है जो कि बच्चों का काम, और सिर्फ इसके हासिल करने में मेहनत और मुशक्कत करते रहना है, वक्त जाया करने के सिवा कुछ भी नहीं। खेलता कूदता क्या मिलता है, मुशक्कत थकन वक्त जाया हुआ और कुछ मिला, खेल कूद। ये दुनिया की जिंदगी की यहां बयान किया गया। नंबर दो, ये एक और दो दोनों में आ गया, दुनिया की जिंदगी जीनत और आरइश का नाम है जो कि औरतों का शेवा है। नंबर चार और पांच, दुनिया की जिंदगी आपस में फख्र और गुरूर करने और माल और दौलत एक दूसरे पर ज्यादती चाहने का नाम है। और जब दुनिया का ये हाल है और उसी में ऐसी ऐसी बुराइयां मौजूद हैं, तो इसमें दिल लगाने और इसके हुसूल की कोशिश करते रहने के बजाय उन कामों में मशगूल होना चाहिए जिनसे उखरवी जिंदगी संवर सकती है। ये है कुरान करीम के इस आयत करीमा का जो मैंने हिस्सा बयान किया, इसकी तफसीर मैंने एक साथ बयान की, आयत का हिस्सा तर्जमा और इसकी तफसीर क्या है, अल्लाह पाक जो हमें फरमा रहा है इसका माना क्या है, मतलब क्या, ट्रांसलेशन क्या, इसकी शरह किया, इसकी वजाहत किया, वो मैंने आपके सामने इस वक्त बयान किया। हम अपने रब पर ईमान लाएं, हमारे रब ने हमें बता दिया कि ये दुनिया है। हदीस पाक में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे पर इंतहाई ताज्जुब है जो आखरत के घर की तस्दीक करता है, आखरत का घर है, लेकिन वो धोखे वाले घर यानी दुनिया के लिए कोशिश करता है, ताज्जुब है उस शख्स पर। हजरत ज़ुन्नून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए मुरीदीन के गुरु, दुनिया तलब ना करो और अगर तलब करो तो इससे मोहब्बत ना करो, यहां से सिर्फ उतना सामान लो क्योंकि आरामगाह तो और है यानी आखिरत, ये नहीं। आप में से कौन कौन दूसरे मुल्क से आया है, यहां क्या हो, परदेसी, आखिर एक कार देर सवेर जाना कहां है, बैक टू होम, उमूमन वही होता है, हम नहीं जाते तो हमारी मैयत भेज दी जाती है, रे यहां रहे हैं, तैयारी कहां की कर रहे हैं, जहां आपका जहन है कि हमें जाना है, क्योंकि मैं कहीं से आया हूं मुझे वापस जाना है। ला तुर ज्ञान, क्या तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं है, क्या तुम्हें हमारी तरफ पलटना नहीं है। खूबसूरत आयत, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जी, लौटा, जहां कहीं से आई है तो लौटेगी ना, लौट अपने रब की तरफ, वापस जाना है, तीर गिरी, लौट अपने रब की तरफ। जब जाना वहां है, ये सिर्फ आपको यहां की मिसाल दी, यहां घर कुशादा नहीं चलेगा, अलमारी टूटी फूटी चलेगा, कपड़े मतलब पेटी वेटी में रखे हुए चलेगा, बाथरूम टूटा फूटा ये भी चलेगा, दरवाजे भी टूटे फूटे चलेंगे, सब चलेगा, सब चलेगा, क्यों, रेड़ा नहीं है तो यहां पर खर्च क्या करना, घर अपना नहीं है, किराए का घर है, खर्च क्या करना, जहां जाना है मैं वहां की तैयारी कर रहा हूं। इस्लामी भाइयों, जिंदगी में तो ये सोच रहे हो, अब सोचो कि आखिर जाना कहां है, अपने मुल्क में भी जाकर भी जाना कहां है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, क्या भेजा है वहां के लिए, क्या भेजा कब्र के लिए, क्या तैयारी की आखिरत की, जहां मरना है वहां की इतनी तैयारी और जहां मरना नहीं है वहां की कोई तैयारी नहीं, कितनी अजीब सी जिंदगी है हमारी। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां से बना बनाकर भेजा, यहां बस जैसे तैसे कर कसर करके जिंदगी गुजार तो दी, इस तमन्ना पर गुजारी थी कि वहां जाऊंगा तो कुछ आसाई की जिंदगी मिलेगी, पता चला खुद क्या गए, मैयत ही गई, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. بن 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 کے بھی پچاس ساٹھ ستر سال یہی نکل جاتے ہیں. چالیس پچاس پچاس سال پچاس پچپن سال کا تو ہو ہی جاتا ہے آدمی, تو تھوڑا بہت بنانے بنانے میں. اور اب بچ بھی گئے پچاس ساٹھ سے نکل بھی گئے تو اب ہے کیا, کیا کریں گے پیسے کا؟ اولاد کرے گی, اولاد رہے گی اپنی تو کرے گی, یا اولاد بھی کس کی رہ رہی ہے بھائی؟ بڑا آزمائش والا معاملہ ہے. یعنی یقین مانے میں جو کہہ رہا ہوں, اگر آپ ٹھنڈے دل سے انصاف کے ساتھ سوچیں ہم خود اپنے اوپر کتنی زیادتی کر رہے ہیں. ارے دنیا میں جس طرح جی رہے ہیں, کیا مرنے کے بعد بھی تکلیفوں میں جینا ہے؟ ایسے جیو نا کہ قبر جنت کا باغ بنے. ایسے جیے جنت اللہ کی رحمت, اللہ جنت ہمارا مقدر کر دے, اللہ کو راضی کر کے جیے. اگر پردیش میں بھی جینا ہے, ملک میں جینا ہے, دنیا میں کہیں بھی جینا ہے, اپنے رب کو راضی کر کے جینے میں کیا مطلب, ہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ نفس اور کیا رکاوٹ, شیطان. نفس و شیطان سے لڑنا ہے, یہ تو ہمارا کام ہے. نفس کہتا ہے, شیطان کہتا ہے کر, ہم کہیں گے نہیں کروں گا, میرے رب نے منع کیا. اللہ پاک ہم سب کو ہمت و طاقت دے, اور یہ سوچ اللہ تعالیٰ میں نصیب کرے کہ آخر ہے کہاں کی تیاری. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل لگا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. کچھ نہیں ہے پیارے اسلامی بھائی, سب یہیں رہ جائے گا. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر ہے. میں تو ان ممالک میں آ کر گھوم گھوم کر یہ دیکھ رہا ہوں, پریشان پریشان پریشان. اس بھائی پریشان سے پوچھتا ہوں, بھائی پریشان نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں. بھائی پریشان تلاوت کرتے ہو؟ نہیں. بھائی پریشان کچھ نیکی کے کام اور کرتے ہو؟ نہیں. تو بھائی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جو پریشانی دور کرے گا وہ تو رب ہے, جو قرضہ اتارنے میں مدد کرے گا وہ تو رب ہے, جو روزگار کے راستے کھولے گا وہ تو میرا رب ہے, جو تنگ دستی دور کرے گا وہ تو میرا رب ہے, جو پریشانی دور کرے گا وہ تو میرا رب ہے, جو شفا دے گا وہ تو میرا رب ہے, آپس کی محبت جو دے گا وہ تو میرا رب ہے, اتفاق جو پیدا کروائے گا وہ تو میرا رب ہے, جو نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا وہ تو میرا رب ہے, جو زوال نعمت سے بچائے گا وہ تو میرا رب ہے, وہ قادر مطلق ہے. اب غور تو کرے. ایسے 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 دکھی پریشان سفر میں ملتے ہیں. اللہ اللہ, میں کہتا ہوں اگر سو لوگ ملے ہیں نا تو 95 پریشان ملے ہیں, اور جو بقیہ پانچ جنہوں نے کہا نہیں ہے نا, کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پریشان نہیں ہے, کہا نہیں ہوگا پریشان. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال اس دنیا کی زندگی آسائشیں پانے, سہولتیں پانے, آسانیاں پانے کے لیے دن رات ایک کی, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ساری تمنا پوری ہو گئی, میری آرزویں پوری ہو گئیں, میری خواہشیں پوری ہو گئیں, اور جناب بس ابو جو ہاں ہاں کچھ نہیں, ہاں کچھ نہیں ہے کوئی آدمی نہ, مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی شخص آئے گا. نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی تو بہت فاصلہ باقی ہے, ابھی تو بہت دوری ہے. میرا سوال ہے, چالیس چالیس پچاس پچاس سال جس کو پانے میں لگا دیے اور تسلی ابھی نہیں ہے, ملا کچھ بھی نہیں ہے, اور جس کو پانے کے لیے ایک دن بھی نہیں دیا, آخرت قیامت کی تیاری, اس کے لیے کیا تمنا کر کے بیٹھے کہ جناب وہ صحیح ہو جائے گا؟ حالانکہ یہ تو وہ مقام, مطلب یہ جو میں جو موضوع کہہ رہا ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے. سوچے میرے پیارے اسلام بھائیو, سوچے. اب یا بھائی کرے کیا, کیا کرے؟ اب بتا بھی دو کیا کرے. ٹھیک ہے بھائی کر لیا, نہیں ہوا, زندگی نکل گئی, جوانی نکل گئی, نکل رہی ہے, بڑھاپا آ گیا, اب کرے کیا؟ کوئی نہیں, پہلے سچی توبہ کرے. پہلے کیا کرے؟ اب مانے بھی تو صحیح رہے, یا اللہ بھول ہو گئی, گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی ہے, ایکسکیوز کرتے نہیں کرتے, معافی مانگتے نہیں مانگتے, یا اللہ بھول ہو گئی معاف کر دے, کریم ہے معاف کر دے گا, وہ تو کریم ہے, اس کو تو معاف کرنا پسند ہے. ہم تو دعا کرتے اللہ انک عفو کریم,
तुहिबुल अफ़्फ़ फ़ाफ़ू अन्नी,
उसको तो माफ करना पसंद है, वो माफ फरमा देता है। हे कोई जो उससे माफी मांगने के लिए आए, सच्ची माफी मांगने के लिए आए। सच्ची माफी से मुराद ये होती है कि आइंदा गलती नहीं करूंगा मौला। जैसे हम आपस में बोले, आप किसी को मारो, ओया गलती सॉरी, लेकिन देखो दोबारा मारूंगा, बोले फिर किस चीज की सॉरी। हम आपस की बात करें, अल्लाह से माफी मांगे, मौला माफ कर दे, तो इसका मतलब यह कि या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। ये आइंदा करने का इरादा रखकर माफी मांगना ये सच्ची तौबा नहीं कहलाती। या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, माफी मांगे अपने रब से, ये सबसे पहला काम माफी मांगना है। मौला माफ कर दे, कान पकड़, माफ कर दे, भूल हो गई, गलती हो गई, माफ कर दे। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा इत्तमाम करने की जरूरत नहीं है, नदामत तौबा है। हदीस में क्या आया, शर्मिंदगी तौबा है, अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा हो जाए। अफसोस, आंसू निकलता है निकलने दे, दिल रोता है रोने दे, अफसुर्दगी होती है, अफसोस होता है, गम आता है दिल में, क्या हो गया, ऐसे ही जवानी गुजार दी, वक्त गुजार दिया, अब क्या होगा। अगर आज ही मर गया, रातों रात मर गया, जिंदा रह गया, तब भी अगर गुनाह करते करते मर गया तो क्यों अपने अंदर शर्मिंदगी पैदा करे। फिर अपने रब से माफी मांगे, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर देना। वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो सुबहान है, उसी रब की कसम वही रहमान है, उसके सिवा कोई रहमान नहीं, कोई रहमान। जब बंदा उससे सच्ची तौबा करता, अल्लाह माफ कर देता, बख्श देता, सारे गुनाह बख्श देता, सत्तर सत्तर साल के गुनाहों को वो सत्तर सेकेंडों में बख्श देता है। मुझे एक वाकया बड़ा पसंद है, अमूमन इसे मौके पर मैं सुनाता रहता हूँ, मौके की मुनासिबत से एक बार फिर सुना देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह की रहमत पर ये बड़ा अजीम वाकया है कि अल्लाह ताला कैसे बंदे की तौबा कबूल करता है और उसकी इज्जतों की हिफाजत फरमाता है। एक दफ़ा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन से उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल थी, बोतल में थी शराब। उससे दूर से देख लिया अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं, अब उसकी घबराहट, अब उससे दिल ही दिल में अपने रब से दुआ की, मौला बचा ले, तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। दिल ही दिल में वो अपने रब से दुआ कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन सैयद उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला से करीब आते हैं, अर्शद फरमाते हैं बता बोतल में क्या है। उसकी रब की रहमत पर भरोसा देखो, कहता है अमीरुल मोमिनीन से सिरका है। आप बोलते दिखा, जब देखते हैं तो अल्लाह ताला ने उस शराब को सिरका बना दिया। एक जो सच्ची तौबा लेकर माफी मांगे और अपनी जिंदगी को बदले, तौबा की अब इल्म हासिल करे, नमाज से सही पढ़नी है, इबादत सही करनी है, तिलावत सही करनी है, रोजे सही रखने, जकात सही देनी है, हज सही करना है, गुस्ल सही करना है, वजू सही करना है, कपड़े सही पाक करने हैं, जो कमा रहे उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं हलाल ही कमा रहा हूं, हराम का एक सिक्का, हराम का एक लुकमा, हराम का एक जर्रा नहीं है मेरे माल के अंदर। इस तरह और इससे और भी बहुत सारी बातें हैं, पढ़े और जिंदगी अपनी सब बदले। मुझे बताए कि नीकी की तरफ जिंदगी आई, हमारी रूटीन में क्या फर्क पड़ा, बत्ती वही आपका सोने का टाइम, वही जागने का टाइम, नमाजों में उठना है, फजर में उठना है नहीं है, क्या वक्त क्या हुआ क्या। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, एक मुट्ठी दाढ़ी, इसका क्या ऐसा वजन है जिसको माज अल्लाह बंदा उठा नहीं सकता, इसको मुंड कर नाली में बहा देता है, माज अल्लाह सुबह माज अल्लाह। क्या सरकार का आशिक ऐसा होता है कि सरकार का आशिक आका की दाढ़ी सर चेहरे पर नहीं सजाएगा। इमामा भी सुन्नत है, इमामा भी सर पर सजाना चाहिए, लेकिन चलो इमामा अगर कोई नहीं पहनता, इवन कि अल्लाह ना करे मतलब कोई नंगे सर भी है तो चलो गुनाहगार नहीं है, मगर सुन्नत तो फटे ना। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, जुल्फे प्यारे आका की सुन्नत। यूं बहुत सारी सुन्नतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो जिंदगी मदीना मदीना हो जाए यार। तो गुनाह छोड़कर जीने पर बात करें बस, ये गुनाह नहीं, मतलब ये जेन बना लें। मिसाल तो ये कानून जहां आप रहते हैं, ये कानून टूट रहा है, क्या करते हैं आप? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी किया है ऐसा? नहीं, फर्क पड़ता है, पड़ता है भाई, नहीं करते हैं लोग, एक सिग्नल तक तो नहीं तोड़ते, रात को तीन चार बजे कोई ट्रैफिक नहीं, फिर भी सिग्नल पर खड़ा है, क्यों? डर है पकड़ हो जाएगी। दुनिया का कानून की पकड़ तुम्हें कानून तोड़ने से रोकती है,
अल्लाह की पकड़ तुम्हें शरीयत का कानून तोड़ने से नहीं रोकती, ये अल्लाह की पकड़ हो गई तो मैं कहा, और जिसको रब पकड़े उसको कोई छोड़ा नहीं सकता। खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है और उसकी पकड़ से डरना चाहिए। और जो हमारे गुनाह हमारी ये हमारी जो परेशानी है, कभी गौर तो करे, संजीदगी के साथ गौर तो करे, ये है क्या? डिप्रेशन, बीमारियां, परेशानियां, ख्वाब, डर, अगर गौर करेंगे तो इनके पीछे भी हमारी बुराइयां और हमारे गुनाह ही मिलेंगे। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और गुनाह से बचकर अल्लाह पाक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम अल्लाह ताला की बंदगी करें, नेकी करें, तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह अपना सबसे आखिरी खुतबा जो आपने इरशाद फरमाया, इसमें आप फरमाते हैं, इसमें यह भी है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए अता फरमाई है कि तुम इसके जरिए आखिरत की तैयारी करो, इसलिए अता नहीं फरमाई कि तुम इसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया फानी और आखिरत बाकी है, तुम्हें फानी दुनिया कहीं बहका कर बाकी यानी आखिरत से गाफिल ना कर दे, फना हो जाने वाली दुनिया को बाकी रहने वाली आखिरत पर तरजीह ना दो, क्योंकि दुनिया मुनकता होने वाली है और बेशक अल्लाह पाक की तरफ लौटना है। अल्लाह से डरो क्योंकि इसका डर इसके अजाब के लिए ढाल और उस तक पहुंचने का जरिया है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। रसूल पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत के मुकाबले में दुनिया इसी तरह है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली को समुंदर में डालता है और इसे देखना चाहे कि वो क्या लेकर आई। आखिरत के सामने दुनिया इसी समुद्र में उंगली डालकर निकालो तो उंगली पर पानी कितना आया। ये दुनिया और आखिरत की मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत अता हो और हम ये दुनिया की झंझटों से आजाद होकर एक काश एक आध नेकी करके जीने में कामयाब हो जाएं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो दुनिया हासिल करने का इरादा करता है वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचा, और जो आखिरत संवारता है इसकी दुनिया को नुकसान पहुंचता है। तो ये लोगों, हमेशा रहने और बाकी ना खत्म होने वाली आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना पायदार जल्द खत्म हो जाने वाली दुनिया की जिंदगी के नुकसान की परवाह ना करो। क्या कमाल की बात, नहीं यार कैसे करें, ये कैसे करके तो चले गए लोग। क्या कोरोना भी समझा कर नहीं गया? 2-2.5 साल कोरोना भी ना समझा सका हमको, हमारे सामने लाशों के अंबार लग गए, घर घर मैयतें गोया के थी, डर लग रहा था कि अब गए कि अब गए। चलो बच गए, कोरोना से बचे हो, मौत से हम नहीं बचे। एक दिन मरना है आखिर मौत, कर ले जो करना है आखिर मौत, मौत तो आनी, कब्र में उतरना ही उतरना, अपनी करनी का फल भुगतना ही भुगतना है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत। वे मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इस आने वाली मौत की तैयारी करें, नजा की सख्तियां बहुत है। मौत क्या एक झटका तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है, क्या करेंगे नजा के आलम में। अगर अल्लाह नाराज हो उसके प्यारे हबीब गुड़ गए, खुदा ना खासा ईमान बर्बाद हो गया, अल्लाह हमारा ईमान सलामत, हम दुनिया से ईमान सलामत लेके जाए। डर लगता है ईमान कहीं हो जाए ना बर्बाद, अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारा ईमान सलामत रखे। कभी कुछ बोलने में, लिखने में, करने में कोई सा काम ना हो जाए जिससे हमारा ईमान जाया हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, डरना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उलमा का कौल नकल फरमाते, जिसे दुनिया में अपने ईमान के जाया होने का डर नहीं होता, डर है कि मौत के बाद उसका ईमान जाया हो जाए। कुछ नहीं कह सकते, लम्हा लगता है। कोई ऐसी बात, एक शख्स हज पे जा रहा था, कहीं रुका, एक औरत को देखा, उसको दिल आ गया, अपने साथियों को बोला तुम जाओ, साथी चले गए, बोला ये पीछे आ जाएगा। उसने औरत से रब्ता किया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। तो औरत ने कहा कि मेरे बाप से बात कर। उसके बाप से बात की तो उसके बाप ने कहा कि मैं तो मुसलमान नहीं हूं, तू मुसलमान है, अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता हो तो हमारा मजहब इख्तियार कर।
वो हज पे जा रहा था, लेकिन औरत के फितरे में पढ़कर उसने अपने ईमान से हाथ धोया, उसका मजहब इख्तियार किया और फिर शादी की, गैर मुस्लिम हो गए। हुआ क्या, शादी भी हो गई तो चंद दिनों के बाद मर गया। क्या मिला, कुफर पे मरा, अल्लाह की पना, औरत के फितरे में पड़ गए। बाज़ होगा एक आंख का देखना इंसान को फितरे में डाल देता है, अल्लाह की पना। यानी इतने फितने बिखरे, इतने फितने फैले हुए, हम बिल्कुल लापरवाह होकर चल रहे, कुछ नहीं होगा। अपनी फिक्र करो, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, अपने घर बार की फिक्र करें, अपनी औलाद की फिक्र करें। ईमान से ज्यादा कीमती कोई शेय नहीं है। जन्नत में वही जाएगा जो ईमान सलामत लेकर गया है, बस ये याद कर लो, जन्नत में वही जाएगा जो ईमान सलामत लेकर जाएगा। अपने अल्लाह पाक आपके मेरे ईमान की हिफाजत करें, और ईमान की हिफाजत, ईमान की सलामती के लिए दुआ भी करें और कोशिशें भी करें। कोई ऐसे फितने की तरफ अल्लाह ताला आपकी मेरी हिफाजत करे जिससे हमारा ईमान जाया हो जाए, अल्लाह ना करे। अपनी औलाद के लिए भी सोचे, बीवी बच्चों के लिए सोचे, सारी दुनिया के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि बस अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखना, हमारा ईमान सलामत रखना, हमारा ईमान सलामत रखना। ईमान की सलामती के लिए भी जरूरी है कि बंदा गुनाह से बचे, कि गुनाह करते 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 बंदा कुफर में जाकर गिरता है, और अल्लाह की पनाह, फिर वो कुफर कब कर बैठता पता नहीं। तो हदीद दूर रहे ना, अल्लाह पाक आपकी मेरी बेहिसाब मगफरत फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए, और ये आफत और परेशानियां जो इसको फैली हुई हैं, अल्लाह पाक आपकी मेरी से हिफाजत फरमाए, और अपने घर वालों की भी एक काश के हम इस्लाह करने में कामयाब हो जाएं। मैं आपको मशवरा दूंगा, अपने घर में फैजान सुनत का दर्स शुरू कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप संजीदा हैं तो मेरी गुफ्तगू को समझिए, ये मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये घर और हमारी इस्लाह का जरिया बनेगा। आप 2-5-8 मिनट का दर्द दें घर में बैठकर, भले आप दोस्त हैं, जो भी आपस में फैमिली मेंबर है, जो भी है, मदनी चैनल पर भी आप देखो सुन रहे हैं, बच्चे बच्चियां, बड़े मर्द औरत जो भी है, बेपर्दगी ना हो, दर्द दें 5 साल, गिबत की तबाह करिए, नेकी की दावत, फैजान सुन्नत, एक किताब ले लें मक्तुतुल मदीना से जो दर्द की है, आप दर्द देना शुरू कर दें, 5-7 मिनट का दर्द दें। इसके लिए कोई मतलब आपको कहीं जमा नहीं होना। इस्लामी बहनें बेपर्दगी से बचे, बेशर्मी से बचे, बेहयाई से बचे, अजनबी मर्दों से दूर रहे, अपनी औलाद की परवरिश माओ को चाहिए अच्छे अंदाज से करें। 2-2, 4-4, 5-5 साल शुरू के बड़े कीमती होते हैं औलाद के लिए। अपनी औलाद के अकायद और नजरियात को मजबूत करें, अल्लाह ताला के ताल्लुक से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, अंबिया कराम के ताल्लुक से, जन्नत जहन्नम फरिश्ते किताबुल्लाह कुरान करीम के ताल्लुक से, बाहर शरीफ का पहला हिस्सा ये खुद भी पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अल्लाह ने चाहा तो ये वो अकायद और नजरियात की पुख्तगी होगी कि जब बच्चा शुरू से पढ़ाएगा, सुनेगा, समझेगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसे कोई फितना इसके दिलो दिमाग को खराब नहीं कर सकेगा। ना कोई एक बात कहीं से कान में जाती है, 10 सवाल दिमाग में पैदा हो जाते हैं। बच्चा आकर अपने माँ बाप से पूछता है ये कैसा, तो माँ बाप को भी बदकिस्मती के साथ पता नहीं होता कि ये कैसा, बोलो है या नहीं। कैसे अपनी औलाद को हम बचाएंगे, खुद को कैसे बचाएंगे। कोई कान में आकर कह देगा, कोई आपस में दोस्त वगैरह कह देगा, माजल्ला सुमा माजल्ला, जो मैं कहना चाहता हूं मेरी बात शायद आप खुलकर बोलो या ना बोलो, समझ शायद सभी रहे होंगे। किस चीज पर एतमाद कर रहे हैं, तो बच्चों को शुरू से अकीदे नजरिए जो मैंने आपको अर्ज किया बताएं, कितने क्या हैं, सब बताते हैं। यार दुनिया में कैसे रहना है, मुल्क में कैसे रहना है, इधर कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, बिल्डिंग में कैसे रहना है, फला जगह कैसे रहना है, सब सिखाते ही है ना बच्चों को, क्या खाना है, कैसे पीना है, कैसे सब सिखाते ही है ना। दीन और इस्लाम की बुनियादी बातें क्यों नहीं सिखाते हम अपनी औलाद को, इंशाल्लाह सिखाए। आप करें तो सही उनके सामने। मैं एक यूके में एक शख्स से मिला, वो मुसलमान हो चुका है। उसने अपने मुसलमान होने की जो वजह बयान की ना, बड़ी अजीब वजह थी, बड़ी हैरत, यानी खुशनुमा हैरत होगी आपको। वो कहते हैं मुझे मुसलमान होना था, मैं कहीं कहीं कहाँ दुनिया के कई मुल्कों के नाम लिए इसने, मैं डिटेल में नहीं जाता, और उसे कई किताबों के नाम लिए, कई मजहब वालों के नाम लिए, कई लोगों के नाम लेके मैं किस किस के पास गया कि मुझे को रास्ता पता चले। आखिरकार मुझे एक मुसलमान ने, उसने मुझे बताया, एक मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक कैसी थी मुझे वो दी। कोई किताब दी होगी, इसका नाम मेरे जहन, मुझे नाम नहीं बताया उसने तो कौन सी किताब थी। तो उसने कहा जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी ना, मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा हुई और मैं किताब पढ़ कर मुसलमान हो गया। ऐसी सीरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अगर हम घर में करें तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दिन रात घर में देखेगा तो हमारा, हमारे बच्चे का ईमान कितना मजबूत हो जाएगा। जब आप बैठकर सुन्नत की मदद खाना खाएंगे तो बेटा पूछेगा अबू क्या है, तो फिर हम बताएंगे ये सुन्नत है, मिसवा क्या है ये सुन्नत है, ये क्या है ये सुन्नत है। उसके अंदर रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। माँ करे, वालिद करे, ये सब करे ताकि बच्चों को पढ़ा। हमें ये बच्चों पे क्या करे, बच्चों को ये करे, ये तो घर में जब बच्चे हैं तब भी कर सकते हैं, बाहर से आएंगे तब भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर रात कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसके रग रग के अंदर, रुए रुए के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत और सुन्नतों की ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि प्यारे आका के सदके में उसके कोई कदमों को हिला नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। ये है करने के काम, ये करने के काम है। अपने घर में माहौल बनाए, मदनी चैनल ही चलाए, सुन्नतों भरा माहौल लगे, नेकियों भरा माहौल लगे, नमाजों भरा माहौल लगे। अब ना बाप नमाज पढ़े ना माँ नमाज पढ़े, बोला बच्चा हाथ से चला गया, अपना भी तो सोचो, आप भी तो हाथ से चले गए हो, क्या नमाज ना पढ़ने वाला भी तो हाथ से चला गया, अब्बा को पता नहीं कि मैं भी हाथ से चला गया हूँ, माँ को नहीं पता मैं भी हाथ से चली गई हूँ, माँ बेपर्दगी कर रही है कहते बच्चा हाथ से चला गया, माँ तू भी हाथ से चली गई है, तू कहाँ ठिकाने पर है, नमाज तो तू एक टाइम भी नहीं पढ़ती, फोन पर 10-10 घंटे बैठकर गिबतें करती है, मोबाइल का कर रहा हूं, तो हाथ से तो माँ आप भी चली गई हो, अब्बा हुजूर हाथ से तो आप भी चले गए हो, झूठ आप बोलते हो, गिबतें आप करते हो, वादा खिलाफी आप करते हो, फिल्म में ड्रामे आप देखते हो, गाने बाजे आप सुनते हो, नमाजें आप छोड़ते हो, फिर कहते हो मेरा बच्चा हाथ से चला गया, माफ कीजिएगा बच्चे के साथ साथ आप भी हाथ से चले गए हो। जी हाँ, अल्लाह का ना फरमान जो हुआ वो हाथ से चला गया, आपको अपना ना फरमान याद आता है, आपको अपने रब की ना फरमान याद नहीं आती। ये मैंने चंद चीजें घर सोसाइटी फैमिली और पर्सनल लेवल पर बयान की है और इन सबका हल अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में कि जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की,
जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत रसूल की, मोहब्बत रसूल की, सुन्नत रसूल की, चाहत रसूल की।
इंशाअल्लाह अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
मैं मुबल्लिग़